परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक में से भजन संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम अध्याय 17 के कुछ पदों को अध्ययन किए, आज हम उससे आगे अपने अध्ययन में बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सच्चे वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हम भजन संहिता से आपके दास भजनकार के साथ आपके वचन का अध्ययन करते हैं, हमारी विनती है कि आप हम सबके जीवन में इन वचनों के द्वारा कार्य करें, हमारे श्रोता भाई बहनों के जीवन में आप कार्य करें, मेरे जीवन में कार्य करें, ताकि हम सब आपके वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमारे भाई बहन जो निराश हैं, चिंतित हैं, बीमारी अवस्था में हैं, आप उनकी भी सुधि लीजिए, उनकी भी सहायता कीजिए, ताकि प्रत्येक जीवन आप में आनंदित होने पाए। प्रार्थना बड़े धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पिछले अध्ययन में हम अध्याय 17 से देख रहे थे, उसका विषय था घोर संकट में दाऊद की प्रार्थना। भजन संहिता 17 का अभिलेख है दाऊद की प्रार्थना। अब प्रश्न यह था कि यह भजन कब लिखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसके जंगल प्रवास के समय उसके मन में उभरी थी। यह संभवतः उस समय से संबंधित है जब राजा शाऊल और उसके सैनिकों ने लगभग उसे पकड़ ही लिया था। यह भजन परमेश्वर में दाऊद का भरोसा प्रकट करता है, परंतु अंतिम विश्लेषण में यह मुख्यतः प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता है। यह भजन आज हमारे लिए भी एक प्रार्थना है जब हम ऐसे ही संकटों, तनाव और परीक्षाओं में होते हैं। इस भजन के अध्ययन में स्मरण रखें कि हम भजनों की एक नई श्रृंखला में हैं, जो मसीह के विषय भविष्यवाणी है। अंततः यह यीशु के ही संबंध में एक पुस्तक है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 17 उसके 4 पद से पढ़ेंगे। तो आइए हम भजन संहिता 7 उसके 4 पद को पढ़ें। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। ध्यान दीजिए, क्रूरों अर्थात शैतान, संसार में उसकी उपस्थिति के कारण परमेश्वर की प्रत्येक संतान को सतर्क रहना चाहिए। दाऊद अपने शत्रु की सीमा में था और शाऊल से भागते समय वह इस बात को जानता था। जी हाँ, हम भी अपने शत्रु की सीमा में हैं। पृथ्वी शैतान की है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 13 पद में प्रभु कहते हैं, पिरगमोन की कलिसिया से कहता है, मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। मैं नहीं जानता कि आप कहाँ रहते हैं, परंतु शैतान का सिंहासन यही है। हमारा प्रभु शैतान के फंदे में नहीं पड़ा, परंतु हम अवश्य उसके फंदे में पड़ जाते हैं या पड़ गए हैं। भजन संहिता 17 उसके 5 से 7 पद में लिखा है, मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। डेलिटस पद 6 का अनुवाद इस प्रकार से करता है, मैं तुझे पुकारता हूँ और तू मुझे सुनता है। दाऊद जानता था कि उसकी प्रार्थना सुनी जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनों से पहचान बनाई, उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता था। मेरे मित्रों, निश्चय जानिए, वह हमारी प्रार्थनाएं सुनकर उत्तर देता है जब हम संकट में होकर उसे पुकारते हैं। यदि आप इस समय किसी परिस्थिति या तकलीफ में हैं, किसी ऐसे अवस्था में हैं, तो निश्चय वह आपकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा। भजन संहिता 17 उसके 7 और 8 पद में लिखा है, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपने पंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। वर्षों पूर्व निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर ने इसराइल को आज्ञा देते समय यही अभिव्यक्ति काम में ली थी, तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। जी हाँ, यह हमारा स्थान है, उसके पंखों की छाव। वर्षों बाद प्रभु यीशु ने यरूशलेम के लिए कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 37 पद में, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद् वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखिए, उसके पंखों तले दाऊद हमें यही चित्र दिखा रहा है। भजन संहिता 17 उसके 9 से 12 पद में लिखा हुआ है, उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं, उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह की नाई है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह की नाई घात लगाने के स्थान में बैठा रहता है। दाऊद परमेश्वर को पुकार रहा है और विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। तब हम आगे पढ़ते हैं भजन 17 उसके 13 से 15 पद में, उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले, अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। मेरे प्रियो, गुफा में छिपा दाऊद उद्धार के लिए परमेश्वर को पुकारता है। दाऊद जानता है कि परमेश्वर उसका उद्धार अवश्य करेगा और एक दिन वह उसकी उपस्थिति में होगा, तथापि उस समय उसके शत्रु अत्यधिक प्रबल प्रतीत हो रहे थे। आप और मैं परमेश्वर की संतान एक ऐसे संसार को देखते हैं जो हमारे विरुद्ध है। हम एक छोटे बालक की नाई हैं जो मैदान में खेल रहा था। वहां उसने एक बड़ी घास देखी और उसे उखाड़ने के प्रयास में लग गया। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति से उसे खींचा और वह उखड़ गई और वह बालक पीछे गिर पड़ा। वह अभी समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। तभी एक व्यक्ति जो उसे निहार रहा था बोला, पुत्र यह था शक्ति प्रदर्शन। उस बालक ने उत्तर दिया, निश्चय ही, क्योंकि पूरी दुनिया तो मेरे विरुद्ध खड़ी थी। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर की संतान की यही स्थिति है, परंतु हमारे पास एक साधन है, एक मार्ग है कि परमेश्वर के पास आ जाएं। हमारे प्रभु यीशु के पास इस पृथ्वी पर यही एक मार्ग था और दाऊद के पास भी जब वह संकट में होता था। आज संकट से घिरे हुए विश्वासियों के लिए यह कैसा सहायक भजन है, विशेष करके तब जब हमारे सामने हमारा विरोधी बैरी हो। हम जो परमेश्वर के नाम में खड़े होते हैं सबको अपने अपने शत्रु हैं, जैसे कुत्ते की जुएं। वे मसीही जीवन का एक अंग प्रतीत होते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 17 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 18 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसका विषय है शाऊल के हाथों से मुक्ति दिलाने के लिए दाऊद का परमेश्वर को स्तुति गान। मेरे मित्रों, यह दाऊद का एक और अनुपम भजन है। मुक्त विचारक टीकाकारों ने इस भजन में दाऊद के अनुभवों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा है और उन्होंने अद्भुत टिप्पणियां की हैं। उदाहरण के लिए मैं पेरोन का एक संदर्भ देता हूँ। इस महान भजन में राजसी कवि कुछ महान पंक्तियों में अपनी जीवनी का चित्रण करता है, उसकी अद्भुत युक्तियों का ब्यौरा और यहोवा द्वारा उसे दी गई विजय की गाथा और अपने मन की अवस्था अर्थात परमेश्वर से लगाव का सत्य तथा इन बातों को प्रभावित करने वाले उद्देश्यों की एक निष्ठा है। उतार चढ़ाव का उसका जीवन, सिंहासन पर बैठने से पूर्व शाऊल द्वारा उसका पीछा किया जाना और राजा बन जाने के बाद भी विरोधियों द्वारा लगातार सताया जाना, जिन्होंने उसके अधिकार को स्वीकार नहीं किया वरन उसकी प्रजा का मन जीतने का लक्ष्य साधा, अपने पुत्र से जान बचाने का वाद्य तथा विदुषियों के साथ लगातार दीर्घकालीन तक युद्ध करना, इस सब बातों के उपरांत एक बात ऐसी थी जिससे वह कभी वंचित नहीं हुआ, यहोवा का प्रेम और उसकी उपस्थिति। जी हाँ, उसी की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को अपने अधीन किया और अब अपनी वृद्धा अवस्था में अतीत के प्रति भक्ति के साथ आभार व्यक्त करते हुए वह अपने परमेश्वर की स्तुति का यह महान भजन गाता है। इस टीकाकार का एक एक शब्द सही है। उसने इस भजन की स्थानीय एवं वर्तमान व्याख्या की है। यह भजन दूसरा सामुएल 22 अध्याय का समरूप है। उस पुस्तक के अध्ययन में मैंने इसका थोड़ा सा विवरण दिया था, परंतु यहाँ हम इसे विस्तार पूर्वक देखेंगे। मेरे मित्रों, इस भजन का अर्थ टीकाकार की व्याख्या से कहीं अधिक गहरा अर्थ है। कुछ बातें जिन्हें केवल काव्य संबंधित उपमाएं कहा गया है, वे भाग उपमाओं से भी कहीं अधिक गहरा अर्थ रखती हैं। ये अभिव्यक्तियां परमेश्वर के पुत्र के विषय में कहती हैं, जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मसीह जो हमारा उद्धार करता है। किसी ने इस भजन का शीर्षक दिया है, मृत्यु के मुंह से यहोवा के सिंहासन तक। मेरे प्रियो, आज संसार में प्रेम के बारे में बृहद चर्चा है और हम प्रायः सोचते हैं कि प्रेम पुराने नियम में विदेशी विषय था, देखिए यह भजन कैसे आरंभ करता है। तो आइए आज हम भजन संहिता 18 उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरे मित्रों, पिछली बार आपने परमेश्वर से कब कहा कि आप उससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर से कहना कि आप उससे प्रेम करते हैं सबसे अधिक अद्भुत बात है। परमेश्वर की स्तुति का आरंभ इसलिए होता है कि वह हमसे प्रेम करता है और उसने हमारे लिए उद्धार की व्यवस्था की है। वह हमारी देख रेख करता है और ईश्वरीय विधान द्वारा हमारी चौकसी करता है। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर को मेरे बल कहा गया है। तब हम आगे देखते हैं भजन संहिता 18 उसके दो पद में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। भजनकार परमेश्वर को अपना बल, अपनी चट्टान और अपना गढ़ कहता है, अपना छुड़ाने वाला भी कहता है। इन सब उपमाओं में वह उसका उद्धार करता है। वह फिर कहता है कि परमेश्वर उसकी ढाल, उसका मुक्ति का सींग और ऊंचा गढ़ है। वह मेरी ढाल है अर्थात मेरा रक्षक है, वह उसका सींग अर्थात उसका सामर्थ है। वेदी के सींगों को पकड़ लेने वाला अपने बैरियों से सुरक्षित हो जाता था। आज हमें अपने परमेश्वर को ऐसे ही थाम लेना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता, हमारा सिंह है, वह हमारा ऊंचा गढ़ है। एक ऊंचा गढ़ सुरक्षा का एक अच्छा स्थान होता है। वह जीवन के दर्शन और दृष्टिकोण के लिए भी एक अति उत्तम स्थान होता है। हमें एक ऊंचे गढ़ में प्रवेश करना आवश्यक है। जी हाँ, इस पद में हमारे लिए परमेश्वर के अनेक उचित नाम हैं। यहाँ पर एक शब्द मेरा विशेष ध्यान आकर्षित करता है, मेरा। दाऊद कहता है कि मेरा ईश्वर मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर के गुणों के बारे में चर्चा करना और उसे सर्वशक्तिमान कहना एक बात है, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कहा जाए मेरे बल। उसे चरवाहा कहना एक बात है और दाऊद कह सकता था कि यहोवा एक चरवाहा है और निश्चय ही वह है, परंतु यह सर्वथा एक भिन्न बात है कि कहा जाए यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरे विचार में मैं जो कह रहा हूँ उसका उदाहरण दूं तो अच्छा होगा। एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए स्टेशन पर गया। वह मेरे बेटे को साथ में ला रही थी। स्टेशन पर अनेक बच्चे थे, वे बड़े प्यारे बच्चे थे। मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। तब अचानक ही एक भिन्न बच्चा प्रकट हुआ। आप जानते हैं कि वह भिन्न क्यों था? मेरा अपना बेटा। वहां बहुत से दादा दादी थे, बहुत से माता पिता थे। कैसे मन भावन हो सकते हैं? उनके नाती पोते उनके लिए उतने ही मूल्यवान थे जितना कि मेरा बेटा मेरे लिए था, क्योंकि वहां एक व्यक्तिगत सर्वनाम है, मेरा, मेरा बेटा। क्या आप कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मेरा ऊंचा गढ़ है, वह मेरा सिंह है, वह मेरी ढाल है, वह मेरा बल है, वह मेरा छुड़ाने वाला है और वही मेरी चट्टान है, वह मेरा गढ़ है। हम भजन संहिता 18 उसके तीन पद में आगे पढ़ते हैं, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। यहाँ पर आराधना का मूल शब्द योग्य से है, अर्थात आराधना उसकी की जाती है जो योग्य है। दाऊद ने गाया, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। क्यों? क्योंकि वह स्तुति के योग्य है। तब हम आगे पढ़ते हैं भजन संहिता 18 उसके चार पद में, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से एक बार भजन प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श करता है। बिशप हॉर्न ने इस भजन में सर्वथा एक भिन्न बात देखी है। मैं उनका संदर्भ देता हूँ। मान लीजिए कि राजा मसीह पूर्वजों स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है। अब हम कल्पना करें कि वह अपने उन कष्टों पर ध्यान कर रहा है जो उसने उठाए, लड़ाइयां जो उसने लड़ी, विजय जो उसने पाई, अब उन सब पर ध्यान कर रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम इन शब्दों की प्रभाविता को कुछ सीमा तक समझ पाएंगे। लगाव की लालसा से मैं तुझे प्रेम करूंगा, हे यहोवा मेरे बल, जिसके साथ मैंने कार्य पूरा किया उसकी एकता में हूँ। और अब तेरे मुक्ति प्राप्त मनुष्यों के मध्य मैं तेरी स्तुति के लिए प्रतिष्ठित किया गया हूँ। हम जब भी इस भजन को गाएं, तो हम यह मानकर चले कि हम मृतकों में से फिर जी उठे, अपने उद्धारकर्ता के साथ एक होकर गा रहे हैं। इससे हमें आभार और भक्ति की प्रेरणा मिलेगी। मेरे मित्रों, यह कैसा चित्रण है! यह एक ऐसा भजन है जिसे हम प्रभु के साथ गा सकते हैं। अब सुनिए, भजनकार अपना अनुभव सुनाता है और मेरे विचार में यह दाऊद का तो कुछ कुछ जीवन दर्शाता है, परंतु यह विशेष करके प्रभु यीशु का चित्रण है, जिसने कहा, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया है। तो आइए हम आगे पढ़ें भजन संहिता 18 उसके 5 और 6 पद में। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। देखिए, वह फिर कहता है अपने परमेश्वर, और क्या हुआ? परमेश्वर ने उत्तर दिया, कब्र से फिर जी उठने पर क्या हुआ? अगले पद में हमें बताएंगे। अब सर्वनाम तृतीय पुरुष में बदल जाता है जो प्रभु यीशु के लिए है। आइए हम भजन संहिता 18 उसके 7 पद को पढ़ें। लिखा हुआ है, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नेवे कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। ध्यान दीजिए, वह पापियों से रुष्ट है क्योंकि उन्होंने उसके पुत्र के साथ क्या किया। सुसमाचार में लिखा है कि जब कब्र पर से पत्थर हटाया गया उस समय भूकंप आया था। इन पदों के समय स्वर्ग में क्या हुआ हम नहीं जानते। भजन संहिता 18 उसके 8 से 11 पद में लिखा है, उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे और वह स्वर को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था और वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। यीशु के क्रूसीकरण के समय अंधकार छा गया था, यह किसने किया था? परमेश्वर ने। भजन संहिता 18 उसके 13 पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। ध्यान दीजिए, इस भजन के आरंभ में सर्वनाम मेरे का प्रयोग हुआ था। इसके बाद पद 7 में वह परमेश्वर के कामों का वर्णन करता है। अब इस अगले पद में वह और मैं का उल्लेख है। व्याकरण के अनुसार यह उचित न हो, परंतु वह ऐसा ही है, वह और मैं। भजन संहिता 18 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। ध्यान दीजिए, उसने मेरे बलवंत शत्रु से मुझे छुड़ाया। ओह, आपको और मुझे परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत और जीवंत संबंधों की कैसी आवश्यकता है। हम उसके साथ बंधन बना लें। उसने हमें शत्रु से छुड़ाया। क्या आज आपको सहायता की आवश्यकता है? क्या आज आपको साथी की आवश्यकता है? मैं आपको एक नाम बताना चाहता हूँ, वह आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कहीं भी और किसी भी हालत में क्यों ना हो, वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वह आपको कभी नहीं त्यागेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 20 पद में उसने कहा है कि वह संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा। जी हाँ, यही कारण है कि मैं किसी की अपेक्षा केवल उसी पर निर्भर करता हूँ। यही कारण है कि आप मनुष्य की अपेक्षा उसी पर निर्भर करें। भजन संहिता 118 उसके 8 पद में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। जी हाँ, संसार में पति पत्नी या बच्चे या रिश्तेदार कोई भी क्यों न हो, मनुष्य होने के नाते हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वह नहीं देगा। भजन संहिता 18 उसके 48 में लिखा है, और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है, तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, उपद्रवी पुरुष मेरे विचार में ये शैतान है। भजन संहिता 18 उसके 49 और 50 पद में आगे लिखा है, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है, वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर हम पर दया करता है। यह अद्भुत भजन परमेश्वर की स्तुति के साथ समाप्त होता है, आपके मुंह में और मेरे मुंह में, आपके जीवन में और मेरे जीवन में, आपके और मेरे मन में सदा परमेश्वर की स्तुति होती रहे। भजन संहिता 107 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। यदि मुक्ति पाने वाले न कहें कि परमेश्वर भला है तो संसार में कोई भी नहीं कहेगा। मुक्ति पाए हुओं को तो कहना ही होगा। जी हाँ, हमें ऐसा कहने वाले मनुष्यों की आवश्यकता है। मेरे मित्र, मैं नहीं जानता कि आज आप ऐसा कहते हैं या नहीं, यदि नहीं तो आज आपको भी कहने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को, अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु, वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदे। दे प्रभु।